आगे सबक देखिए भाई किताब पर। फमिनहु अय मिन अल मरफूई औ मिम मश्तमला अला अलमिल फाइलियतिल फाइलु व इन्नमा कद्दमहु लिअन्नहु अस्लुल मरफूआति इंदल जमहूरी لأنه جزء الجملة الفعلية التي هي أصل الجمل ولأن عامله أقوى من عامل المبتدأ وقيل أصل المرفوعات المبتدأ। अच्छा भाई, गुज़श्ता सबक में मरफू की तारीफ हमने पढ़ी थी। साहिब काफिया ने आपको बतलाया मरफू के बारे में कि हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियती, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। गई मैंने आपको बतलाया था कि ये जो हुआ जमीर है, आम शारहीन लिखते हैं कि यह हुआ जमीर मरफूआत को राजिअ है। इस पर इश्काल होता है कि मरफूआत तो जमा है और जमा की तरफ या तो जमा की जमीर लौटाई जाती है या वाहिद मुअन्नस की जमीर बतावील जमातुन के। भाई तो ये तो हुआ जमीर लौटाई जा रही है मरफूआत की तरफ, तो उस पर मैंने बतलाया था कि जमीर जब दायर हो जाए बैन अल मरजई वल खबर तो उस वक्त आपके लिए जायज है, आप दोनों में से जिसकी भी चाहें रियायत रख सकते हैं। तो यहां खबर आ रही थी मश्तमला, वो है मुफरद मुजक्कर, और पीछे मर्जा जो था अलमरफूआत वो जमा था। तो खबर की रियायत रखें तो मुफरद मुजक्कर की जमीर लाएंगे, और मर्जे की रियायत रखें तो जमा की जमीर लाएंगे या वाहिद मुअन्नस की जमीर लेकर आएंगे। और यहां आपके लिए जायज है ऐसे मौके पर खबर की भी आप रियायत रख सकते हैं और मर्जे के भी। तो आम शारहीन लिखते हैं कि यह हुआ जमीर मरफूआत को राजे है और साहिब काफिया ने यहां खबर की रियायत रखी। खबर चूंकि मुफरद मुजक्कर है इसलिए हुआ मुफरद मुजक्कर की जमीर लेकर आए, लेकिन साहिब जामी ने इसको रद्द कर दिया कि हुआ जमीर मरफूआत को राजे नहीं। वजह यह कि यह मरफू की तारीफ की जा रही है और जमा जो है वह अफराद पर दलालत करती है, तो फिर तो यह अफराद की तारीफ हो जाएगी, हालांकि तारीफ अफराद की नहीं की जाती बल्कि जिन्स और माहियत की जाती है। वजह यह कि अफराद में से एक फर्द की आप तारीफ करेंगे वो दूसरे पर सादिक नहीं आएगी, तीसरे पर सादिक नहीं आएगी, और अफराद बेशुमार हैं तो किस किस की तारीफ की जाएगी। तो लिहाजा अफराद की तारीफ नहीं की जाती बल्कि जिन्स और माहियत की तारीफ कर दी जाती है, और फिर वो उस जिन्स के हर हर फर्द पर सादिक आती है। जैसे इंसान की तारीफ की जाए, अगर जैद की, अमर, बकर, खालिद, ये तो अफराद हैं भाई, किस किस की आप तारीफ करेंगे, एक की तारीफ दूसरे पर सादिक नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके बजाय जिन्स और माहियत की तारीफ कर दें कि इंसान किसे कहते हैं, हैवान नातिक को, बस अब ये तारीफ जो है हर फर्द पर सादिक आएगी, चाहे वो जैद हो, अमर हो, बकर हो या खालिद। तो साहिब जामी फरमाते हैं कि यहां चूंकि ये तारीफ की जा रही है और ये हुआ जमीर जो है ये मरफूआत की तरफ राजे नहीं करेंगे, क्योंकि मरफूआत तो जमा है और जमा तो अफराद पर दलालत करती है, लिहाजा इस सूरत में तो ये अफराद की तारीफ हो जाएगी, हालांकि तारीफ अफराद की नहीं की जाती बल्कि जिन्स और माहियत की जाती है। तो फिर यह जमीर किसको राजे, उन्होंने बतलाया कि यह जमीर मरफूउन को राजे है जो मरफूआत के जिमन में आ गया, क्योंकि जमा अफराद पर दलालत करती है, तो मरफूआत के जिमन में मरफूउन मुफरद भी आ गया। और नीज जैसे जमा अफराद पर दलालत करती है, इसी तरह जमा जिन्स और माहियत पर भी दलालत करती है। मसलन मैंने आपसे कहा रिजाल, रिजाल से आपको एक तो यह बात समझ में आ गई कि कम से कम तीन या तीन से ज्यादा अफराद हैं, अफराद पर भी दलालत हो गई, और साथ जिन्स पर भी दलालत हो गई कि कौन सी जिन्स के अफराद हैं, रजुल की जिन्स के अफराद हैं, इमरा वगैरह के अफराद मुराद नहीं हैं। तो जैसे जमा अफराद पर दलालत करती है इसी तरह जिन्स पर भी दलालत करती है। तो यहां हुआ जमीर राजे है उस मरफू जो मरफूआत के जिमन में आ गया, جو کس کے ذمن میں آیا؟ مرفوع. جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی قرآن سے, قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, اعدلوا تم لوگ عدل کرو انصاف کرو, ہوا اقرب للتقوی, جو عدل ہے, ہوا ضمیر عدل کو راجع ہے, عدل جو ہے وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. بھائی تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر عدل کو کیسے راجع, پیچھے تو عدل کا ذکر ہی نہیں آیا, پیچھے تو عدل مصدر کا ذکر ہی نہیں ہے, پیچھے تو فعل اعدلوا کا ذکر ہے. تو اس کا جواب میں نے بتلایا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے اس کا مفہوم جو ہے مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے, ایک مصدر اور ایک زمانہ اور ایک نسبت الی الفاعل. جو بھی آپ فعل ذکر کرتے ہیں تو اس فعل کے مصدر پر بھی دلالت ہو جاتی ہے, زمانے پر بھی, اور نسبت الی الفاعل. تو اعدلوا کے ضمن میں عدل مصدر بھی آ گیا, زمانہ بھی آ گیا, فعل امر ہے اور فعل امر مستقبل کے لیے آتا ہے تو مستقبل والا زمانہ بھی آ گیا, اور تیسری چیز نسبت الی الفاعل بھی آ گئی. تو ہوا ضمیر اس عدل کو راجع ہے جو اعدلوا کے ضمن میں آ گیا. تو یہاں پر بھی ہوا ضمیر اس مرفوع کو راجع ہے جو مرفوعات کے ضمن میں آ گیا. اور یہ کون سا مرفوع مراد ہے؟ فرد مرفوع مراد نہیں بلکہ جن سے مرفوع مراد ہے, کیونکہ جیسے جمع افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح جنس پر بھی. تو یہاں پر بھی وہ مرفوع جو کس کے ضمن میں آیا؟ مرفوعات کے ضمن میں آیا. اور فرد مرفوع مراد ہے یا جن سے مرفوع؟ جن سے. وہ جن سے مرفوع جو مرفوعات کے ضمن میں آیا اس کی طرف ضمیر راجع ہے. اس کے بعد آگے آیا تھا وَمَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّتِ. میں نے بتلایا تھا ایک ماں موصولہ ہوتا ہے, ایک ماں موصوفہ. ماں موصولہ جو ہے وہ اس میں موصول ہے, آگے آنے والا جملہ اس کا صلہ بنتا ہے, اور ماں موصوفہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی صفت بنتا ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو جب آگے آنے والا جملہ اس ماں موصوفہ کی صفت بن رہا ہے تو اسی سے پتا چل گیا کہ یہ ماں موصوفہ نکرہ ہے, کیونکہ موصوف صفت میں تنکیر و تعریف میں مطابقت ضروری ہے. تو جب صفت نکرہ ہے, جملہ ہے, تو معلوم ہوا موصوف بھی کیا ہے؟ نکرہ. تو ماں موصولہ معرفہ ہوتا ہے اور ماں موصوفہ نکرہ ہوتا ہے بھائی. اور یہ ماں موصوفہ جو ہے اس کو شیء ان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, کوئی چیز, اور جبکہ ماں موصولہ اس کو الذی یا الشیء یعنی معرفہ کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں پر عام شارحین جواب دیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ متن میں تو آیا مشتملا, اور صاحب جامی نے اس کی تفسیر کیا کی, اسم اشتملا, اسم نکرہ کے ساتھ ماں کی تفسیر کی. تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ ماں موصوفہ ہے. وجہ یہ, عام اردو شارحین کی تقریر کر رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ماں کو موصولہ بنایا جائے تو پھر اس صورت میں درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے. درمیان میں فصل. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو, لیکن کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں اور وہ پھر حصر کا فائدہ دیتی ہے. حصر, قصر اور تخصیص تینوں کا ایک ہی معنی ہے. تو کبھی کبھار خبر جو ہے اس کو بھی معرفہ لے آتے ہیں تو وہ حصر, قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم, زید دیکھو معرفہ ہے اور عالم خبر نکرہ ہے, لیکن کبھی خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں. زید العالم, دیکھو عالم پر بھی میں الف لام لے آیا. زید عالم اگر نکرہ ہو اس کا معنی ہے زید عالم ہے, اور اگر خبر کو بھی معرفہ لے آئے تو پھر وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے, زید العالم, زید ہی عالم ہے. دیکھو حصر آ گیا, تخصیص آ گئی. سننے والے کا خیال تھا کہ شاید زید بھی عالم ہے اور عمر بھی عالم ہے, تو میں نے اس کو بتلایا کہ زید العالم, زید ہی عالم ہے. معلوم ہوا عمر عالم نہیں ہے. تو یہ ہے تخصیص بھائی. تو کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں اور یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. لیکن خبر کو جب معرفہ لے کر آئیں तो फिर दोनों में मौसूस सिफत का शुबा होता है। जैदुनिल आलिमो, जैद भी मारिफा, अल आलिम भी मारिफा, तो बजाहिर सुनने वाले को शुबा पड़ सकता है कि शायद ये दोनों मुब्तदा खबर नहीं है बल्कि मौसूस सिफत है। मुब्तदा खबर होंगे तो उसमें बात पूरी होगी, और मौसूस सिफत होंगे तो उसमें बात पूरी नहीं, बल्कि उसके लिए आगे खबर मजीद चाहिए भाई। तो लिहाजा जब खबर भी मारिफा हो तो फिर कभी कभार दरमियान में एक जमीर की सूरत का सीगा ले आते हैं जिसको फसल कहते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यह जमीर ही है और यह इसम है और इसके लिए कोई महल्ले एराब होगा, जबकि आम उलमा फरमाते हैं कि नहीं, यह फसल है, यह हर्फ है, ला महल लहू मिनल एराब, इसका कोई महल्ले एराब नहीं, क्योंकि यह हर्फ है, इसम है ही नहीं। महल्ले एराब इसम के लिए होता है, हर्फ के लिए नहीं होता। यह सिर्फ फसल करने के लिए लाई गई। मसलन जैदुनिल आलिमो, मौसूफ सिफत का शुबा हो रहा था तो दरमियान में हुआ ले आए, जैदुन हुवल आलिमो। इस हुआ ने क्या किया, बतला दिया कि ये जो आगे अल आलिम आ रहा है ये जैद की सिफत नहीं है, क्योंकि इस मौसूफ सिफत के दरमियान कोई और लफ्ज नहीं लाया जाता और यहां तो दरमियान में हुआ आ रहा है। इस हुआ ने बतला दिया कि ये अल आलिम जैद की सिफत नहीं है बल्कि ये खबर है। तो हासिल कलाम क्या कि कभी कभार खबर को भी मारिफा ले आते हैं और वह हसर कसर और तख्सीस का फायदा देती है। हसर कसर तख्सीस तीनों का माना एक ही है, तो ये तख्सीस का फायदा देती है, लेकिन ऐसे मौके पर कभी कभार फिर शुबा होता है शायद ये मौसूफ सिफत हैं, तो दरमियान में एक जमीर की सूरत का सीगा ले आते हैं, उसको फसल कहते हैं, फसल कहते हैं। तो आम उर्दू शारहीन लिखते हैं कि जब मुब्तदा के साथ साथ खबर भी मारिफा आ जाए तो फिर फसल का लाना वाजिब है, तो फिर फसल का लाना वाजिब है। चुनांचे यहां पर भी यही एतराज होता है कि हुआ है मुब्तदा और मश्तमला में मां को अगर मौसूला बनाए तो खबर भी क्या बन गई, मारिफा, और मुब्तदा और खबर जब दोनों मारिफा हो तो दरमियान में फसल का लाना वाजिब है। हालांकि दरमियान में देखो हुआ और मश्तमला, इसके दरमियान कोई और हुआ नहीं है, कोई फसल नहीं है, तो एतराज होता था कि यह मां मौसूला तो नहीं हो सकता, अगर यह मां मौसूला हो फिर तो फसल का लाना वाजिब था, हालांकि साहिब काफिया दरमियान में फसल नहीं लेकर आए। तो शारह जामी ने आगे जवाब दे दिया, मश्तमला अयस मुनिश्तमला, कि मां यह मौसूला नहीं है, यह मां मौसूफा है, अगर यह मां मौसूला होता फिर तो यह मारिफा होता, फिर तो फसल का लाना वाजिब होता, लेकिन यह तो मां मौसूला है ही नहीं बल्कि यह तो मां मौसूफा है और यह नकेरा है, जब यह नकेरा है तो दरमियान में फसल लाने की कोई जरूरत नहीं। तो आम शारहीन फरमाते हैं कि यहां जो शारह जामी ने आयस मुनिश्तमला तफसीर की, मश्तमला की, वो सिर्फ इस एतराज का जवाब देना चाहते थे, लेकिन मैंने बतलाया ये तकरीर सही नहीं है। खबर जब भी मारिफा हो फसल का लाना वाजिब नहीं है, इस मां को मौसूला बना दें फिर भी फसल का लाना वाजिब नहीं, बल्कि अगर फसल ले आए तो अजीब तरकीब बन जाएगी, हुआ के बाद एक और हुआ लाना पड़ेगा, इबारत क्या बन जाएगी, हुआ हुआ मश्तमला। हालांकि कभी आपने कहीं कलाम अरब में इस तरह की इबारत नहीं सुनी होगी कि जमीर दो दो दफा लाई जा रही है, एक जमीर है और एक फसल है, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा ये एतराज दुरुस्त नहीं है कि खबर जब भी मारिफा हो तो फसल का लाना वाजिब है, बल्कि फसल का लाना जायज है, आप चाहें तो फसल ले आए, आप चाहें तो फसल ना लाएं। और मैंने इसकी मिसाल भी जिक्र की थी, हदीस जिक्र की थी, जादु तालिबीन के अंदर आपने हदीस पढ़ी होगी, अद्दीनु अन्नसीहतु, अद्दीनु है मुब्तदा और अन्नसीहतु उसकी खबर, दोनों मारिफा हैं लेकिन दरमियान में कोई फसल नहीं। अद्दीनु नसीहतु, ये दीन जो है यानी दीन इस्लाम जो है, अन्नसीहतु ये खैर ख्वाही ही है, ये खैर ख्वाही ही है, देखो तख्सीस आ गई, यूं तर्जमा कर लो, ये दीन जो है सिर्फ खैर ख्वाही है, ये दीन इस्लाम जो है सिर्फ खैर ख्वाही है, हर एक के साथ खैर ख्वाही करना, किसी को भी किसी भी दर्जे में नुकसान और तकलीफ ना पहुंचाना, ये है दीन की हकीकत भाई, बात समझ में आ गई। तो ये सीधा जन्नत का रास्ता है इंसान का, अगर अकीदा सही हो और फिर किसी को तकलीफ ना पहुंचाए तो ये सीधा जन्नत का रास्ता है। तो देखो यहां अद्दीन और अन नसीहत मुब्तदा खबर के दरमियान कोई फसल नहीं, मालूम हुआ फसल का लाना वाजिब नहीं है। दूसरी हदीस भी मैंने जिक्र की थी कि हिदाया किताबुल मवाकीत के अंदर जिक्र आता है अशफकुल हुमरतु, अशफकुल हुमरतु, तो अशफक ये मुब्तदा मारिफा, अल हुमरतु ये खबर है और ये भी मारिफा, और दरमियान में कोई फसल नहीं, और माना वही हसर वाला होगा, तख्सीस वाला होगा। अशफकुल हुमरतु, शफक सुर्खी ही है, शफक सुर्खी ही है। तो आपको जगह जगह ये बात शुरुआत में मिलेगी, आपने ये यूं समझें राइज गलती है, ये क्या है राइज गलती है, तमाम शुरुआत में भी इसी तरह मिलेगा और तमाम तलबा वगैरह भी इसी तरह जिक्र करते हैं कि जब खबर भी मारिफा हो तो फसल का लाना वाजिब है, हालांकि फसल का लाना वाजिब नहीं। मैंने बतलाया कि यहां मश्तमला इसको साहिब जामी ने मां मौसूफा बनाया, अगर आप इसको मां मौसूला बना लें तो भी कोई इश्काल नहीं, कोई फसल का लाना वाजिब नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है कि फिर साहिब जामी ने वह मश्तमला इसको मौसूफा क्यों बनाया, मौसूला ही बना देते, जब मौसूला बनाना भी सही है तो इसको क्या बना देते, मौसूला बना देते, मौसूफा क्यों बनाया। तो मैंने वजह जिक्र की थी कि वजह यह कि यह खबर है भाई, हुआ यह है मुब्तदा और मश्तमला उसकी खबर, और खबर के अंदर असल क्या है कि वो नकेरा होनी चाहिए, तो उसको अपनी असल पर बरकरार रखते हुए फरमाया कि यह खबर है और खबर में असल भी क्या है, नकेरा होनी चाहिए, लिहाजा इस मां को मौसूला बनाने के बजाय क्या बना लो, इस मां को मौसूफा बनाना बेहतर है कि यह खबर है भाई, तो खबर की असल पर अमल हो जाएगा। और फिर मैंने बतलाया था यह मां मौसूफा है, और मां मौसूफा को किसके साथ ताबीर करते हैं, शय उन कोई चीज, और इसमें दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं, जब इसमें सारी चीजें आ गईं फिर तो इश्काल हुआ कि इसके अंदर तो फेल भी दाखिल हो गया, फेल भी मरफू होता है, फेले मुजारे, यज़रिबु ज़ैदुन, देखो यज़रिबु क्या है, मरफू है, इन्होंने क्या कहा, मरफू किसे कहते हैं, जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। नीज ज़ैदुन जाअनी ज़ैदुन, ये ज़ैदुन क्या है, ये भी इसके अंदर दाखिल हुआ, और ज़ैदुन की दाल भी इसके अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि दाल पर भी क्या है, ज़म्मा है, फाइल होने की अलामत उस पर मौजूद है। तो साहिब जामी ने इस इश्काल को रद्द करने के लिए क्या फरमाया कि यहां मां से दुनिया की हर शय मुराद नहीं, बल्कि यहां मां से क्या मुराद है, इसम मुराद है, ऐ इस्म निश्तमला, दुनिया की हर शय यहां मुराद नहीं। तो ये मां का मिसदाक बतला दिया कि यहां पर जो मां आया ये सिर्फ किस पर सादिक आ रहा है, इसम पर। वजह यह कि बहस चल रही है मरफूआत की, और कौन से मरफूआत, जो इसम है, जो वो इसम जो मरफू वाके होते हैं उनकी बात चल रही है। तो जब ये इसम की बात चल रही है तो हर्फ या फेल या और चीजें इसके अंदर दाखिल नहीं। तो ये मां का मिस्ताक जिक्र कर दिया इस मुनिश्ता मला के साथ। और फिर आगे आया अला आलमिल फाइलियति, आलम के कई मानी आते हैं, साहिब जामी ने आगे बतला दिया अय अलामति कौन इस्मी फाइलन, देखो अलामत के लफ्ज के जरिए आलम का माना बयान कर दिया। मतन में तो क्या आया था अला आलमिल फाइलियति, भाई आलम का क्या माना बतलाया कि आलम यहां अलामत के माना में है। और फिर फाइलियत का लफ्ज आया, मैंने बतलाया था कि ये फाइलियत के आखिर में या मुशद्दद और गोलता है, ये या मुशद्दद और गोलता कभी मसदर बनाने के लिए लाते हैं और कभी निस्बत के लिए लेकर आते हैं। जैसे फाइलियत क्या माना, अगर मसदर वाली या हो तो तर्जमा होगा फाइल होना, और अगर निस्बत वाली या हो फाइलियत फिर माना होगा फाइल वाला। जैसे लाहौरी उनका क्या माना, लाहौर वाला, लाहौरियत उनका क्या माना, लाहौर वाली। तो यहां पर भी ये फाइलियत के अंदर या मुशद्दद और गोलता आई, ये कभी मस्दर के लिए आती है और कभी निस्बत के लिए लाते हैं इस या को। तो निस्बत के लिए जब या मुशद्दद लाएं तो उसका तर्जमा किसके साथ करते हैं, अरबी जुबान में किस तरह उसकी तफसीर करेंगे, लाहौरियन तफसीर क्या करेंगे, ऐ मनसूबुन इला लाहौर, तो मनसूबुन इला के साथ उसकी तफसीर करते हैं। या लाहौरियतुन तो क्या कहेंगे, मनसूबतुन इला लाहौर। और अगर ये या मस्तर वाली हो उसका तर्जमा किसके साथ करते हैं, कौनुशई के साथ, कौनुशई। तो फाइलियत का की तफसीर क्या करेंगे अरबी में, कौनुशई फाइलन। जारिबियत का क्या तर्जमा करेंगे, कौनुशई जारिबन। मजरूबियत का क्या तर्जमा करेंगे, कौनुशई मजरूबन। और अशय के बजाय इसम ले आओ, क्योंकि बात किसकी चल रही है, इसम का फाइल होना या मफूल वगैरह होना। तो अलफाइलियत की क्या तफसीर करेंगे, कौनुल इस्मी फाइलन, इसम का फाइल होना। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं हुआ मश्तमला अला अलम अलफाइलियती, के मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। और फाइल होने की अलामत भाई इन्होंने बतलाया कि तीन है, जम्मा है, वाव है और अलिफ है। और उसके बाद फिर आया था कि जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। भाई फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल होना, इससे तो हमारे जहन में इश्तिमालुल कुल अलल जुज आता है, जैसे कुल जो है जुज पर मुश्तमिल होता है। मसलन आपको कोई बतलाता है कि ये किताब 10 अबवाब पर मुश्तमिल है, मालूम हुआ ये 10 बाब जुज हैं और किताब कुल है। या जैसे आप कहते हैं ये चाय खालिस दूध पर मुश्तमिल है, मालूम हुआ खालिस दूध इसका जुज है। या जैसे आप किसी को कहते हैं कि कुरान 30 पारों पर मुश्तमिल है, यानी 30 पारे कुरान का जुज हैं और कुरान क्या है, कुल। तो यहां पर भी आया कि मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। तो जहन किस तरफ जाता है कि शायद ये जो फाइल होने की अलामत है वो जुज होती है मरफू का। जैसे जा अनी जैदुन, जैदुन के आखिर में क्या है, जम्मा। तो ये जम्मा जहन में आता है कि क्या इन्होंने कहा, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, यानी वो फाइल होने की अलामत उसका जुज होगी। इससे तो जहन में ये आता है कि शायद जा अनी जैदुन, ये जैदुन पर जो जम्मा आया ये जैद का जुज है, हालांकि ये तो जैद का जुज नहीं, जैद तो जा या दाल का पर मुश्तमिल है, और ये जो रफ जम्मा आ रहा है ये जैद का जुज नहीं। तो इन्होंने आपको बतलाया शारह जामी ने कि भाई इश्तेमाल जो यहां इश्तेमाल उल मौसूफ अला सिफत मुराद है, क्योंकि इश्तेमाल की कई सूरतें हैं, कई चीजें हैं जिनके लिए अरबी में इश्तेमाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कभी एक तो इश्तेमाल उल कुल अलल जुज, कुल जो है जुज पर मुश्तमिल होता है उसके लिए भी इश्तेमाल का लफ्ज बोलते हैं। जैसे अभी मैंने मिसाल जिक्र कर दी, ये किताब 10 अबवाब पर मुश्तमिल है, इससे आपके जहन में क्या बात आई कि ये 10 बाब इस किताब का जुज हैं और किताब कुल है भाई। या ये चाय खालिस दूध पर मुश्तमिल है, आपके जहन में क्या आया कि खालिस दूध मालूम हो इस चाय का जुज है। तो जैसे इस्तेमाल उल कुल अलल जुज होता है, इसी तरह इस्तेमाल उल मौसूफ अलल सिफत के लिए भी इस्तेमाल का लफ्ज बोलते हैं कि मौसूफ जो है सिफत पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह इस्तेमाल उल ज़र्फ अलल मज़रूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है इस्तेमाल का लफ्ज। जर्फ बर्तन, मजरूफ वो चीज जो उस बर्तन के अंदर है। तो मसलन अरबी में कहते हैं कि ये बर्तन शहद पर मुश्तमिल है, ये बर्तन या ये बोतल शहद पर मुश्तमिल है, यानी ये बोतल है जर्फ और शहद जो है इसके लिए मजरूफ है, यानी इसके अंदर शहद है। इसी तरह इस्तेमाल का लफ्ज जो है इस्तेमाल जिलहाल अलल हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अरबी में कहते हैं कि जुलहाल जो है वो हाल पर मुश्तमिल है। जानी जैदुन राकिबन, जैदुन है जुलहाल और राकिबन है हाल, तो ये जुलहाल किस पर मुश्तमिल है, हाल पर, यानी ये हाल उसकी सिफत है, ये सवार होना उसकी सिफत है। तो यहां कौन सा इस्तेमाल मुराद है, तो शारह जामी ने आपको बतलाया कि यहां इस्तेमाल उल मौसूफ अल सिफत मुराद है, कि जो फाइल होने की अलामत होती है। क्या तारीफ की, अल मरफू मश्तमला अला अलमिल फाइल, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। मुश्तमिल हो क्या माना, यानी ये फाइल होने की अलामत उसकी सिफत हो। जा अनी जैदुन, ये जैदुन पर जो जम्मा है ये जैद की सिफत है। तो ये इस्तेमाल उल मौसूफ अलस सिफत यहां मुराद है। और फिर आपको इन्होंने ये भी बताया कि जो रफा है, ये जो फाइल होने की अलामत है लफ्जन भी हो सकती है, तकदीरन भी हो सकती है और महलन भी, यानी वो इस फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके साथ मौसूफ होता है, कभी लफ्जन मौसूफ होता है, कभी तकदीरन मौसूफ होता है और कभी महलन मौसूफ होता है। लफ्जन और तकदीरन किस में होगा? मुआरब में। और महलन किस में होगा? मबनी में होगा। लफ्जन मौसूफ होने का क्या माना? मैंने आपको बतलाया था इराब तीन किस्म पर है, या लफ्जन होगा या तकदीरन या महलन। एराब लफ्जी का क्या माना? कि हम उस एराब पर बाकायदा तलफुज करते हैं, तलफुज से ही पता चल जाता है कि आप रफा पढ़ रहे हैं या नसब या जर। देखो जैदुन, जैदन, जैदिन, देखो सुनने से ही पता चल रहा है कि मैं रफा पढ़ रहा हूं या नसब या जर। जैदुन मैंने क्या पढ़ा? रफा। जैदन मैंने क्या पढ़ा? नसब। और जैदिन मैंने क्या पढ़ा? जर। तो देखा तलफुज से ही पता चल रहा है, इसको कहते हैं एराब लफ्जी। और कभी तलफुज से पता नहीं चलता, कोई मानेअ वहां मौजूद होता है, होता तो मुआरब ही है लेकिन किसी मानेअ की वजह से एराब जाहिर नहीं हो सकता। जैसे जा ईसा, रए तो ईसा, मरर तो भी ईसा। अब इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है और अलिफ पर हरकत नहीं आ सकती, तो यह एराब क्या है? तकदीरन एराब। रफा भी तकदीरन आ रहा है। कद्दर युकद्दिरु, तकदीर का माना है फर्ज कर लें, फर्ज कर लें। जाअनी ईसा, फर्ज कर लो इस पर रफा आ गया। रअयतु ईसा, फर्ज कर लें कि इस पर नसब आ गया। मररतु बि ईसा, फर्ज कर लें कि इस पर जर आ गया। या इसी तरह काजी है, जा अल काजी, रअयतुल काजिया, मररतु बिल काजी। अब यहां पर रफा और जर ये तकदीरन आएंगे क्योंकि या काजी के आखिर में क्या है? या। और या पर जम्मा भी सकील है और कसरा भी सकील है, इसलिए जम्मा और कसरा तो नहीं आ सकते, अलबत्ता फतहा आ सकता है। तो मुअरब में जब एराब तकदीरी आता है वहां कोई मानेअ होता है, मुअरब में जब एराब तकदीरी आता है तो वहां कोई मानेअ होता है, जबकि मबनी के अंदर एराब जो है वो महलन आता है, महलन आता है। यानी महलन एराब का माना यह है कि यह जगह रफा नसब या जर वाली है, यह जगह रफा नसब या जो भी हो उस मौके पर। मसलन जा हा उलाई, हा उलाई का माना यह सब, जा अनी हा उलाई, यह सब मेरे पास आए, तो यह हा उलाई यह मबनी है, इसमें इशारा है और मबनी पर एराब महलन आता है। तो जा अनी हा उलाई, यह हा उलाई क्या है? मरफू है महलन, यानी महल के एतबार से मरफू है, यानी इस जगह यह मबनी मौजूद है। अगर मबनी के बजाय कोई मुअरब आ जाता तो फिर उस पर लफजन या तकदीरन एराब आना था, उस पर लफजन या तकदीर। तो लिहाजा शारह जामी फरमाते हैं कि जिस तरह रफा लफजन और तकदीरन हो सकता है, इसी तरह रफा महलन भी हो सकता है और उससे इनकार की गुंजाइश नहीं। दरअसल वो यहां रद्द कर रहे हैं शारह हिंदी का। भाई मैंने बतलाया शारह हिंदी बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले थे, इसीलिए वो शारह हिंदी के नाम से मशहूर हैं, और यानी हिंदुस्तान के रहने वाले। और इन्होंने काफिया की शरह लिखी, उसमें उन्होंने रफ़े महल्ली को जिक्र नहीं किया, रफ़े महल्ली को जिक्र, कि रफा सिर्फ दो ही किस्म पर है, या लफ्जन होगा या तकदीरन होगा। जबकि साहिब जामी फरमाते हैं नहीं, रफा लफ्जन भी हो सकता है, तकदीरन भी हो सकता है और महलन भी हो सकता है। वजह यह क्योंकि मबनी भी तो कभी कभार फाइल बनता है, मबनी भी फाइल बनता है, सिर्फ मुअरब नहीं बनता। मुअरब में तो एराब क्या आएगा? लफ्जन आएगा या तकदीरन आएगा, लेकिन अगर मबनी जब आ जाए किसकी जगह पर? रफा के मकाम में। किसके मकाम में? रफा के मकाम में जब मबनी आ जाए तो आपको मानना पड़ेगा कि यह इस वक्त मरफू है, महल के एतबार से मरफू है। और महल के एतबार से मरफू होने का क्या माना? महल का माना है जगह, यानी ये जगह रफे वाली है। इस वक्त तो यहां मबनी आ गया, रफा जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस जगह मुअरब आ जाता तो वो लफ्जन या तकदीरन मरफू होता। और नहवी हजरात जमीर मुत्तसिल से बहस करते हैं, इसी तरह साहिब काफिया भी जमीर मुत्तसिल से बहस करेंगे। वो जमीर मुतसिल जो फेल के साथ जुड़ी होती है और फाइल होती है, तो वो जब फाइल बन रही है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो महल्लन मरफू है। बात समझ में आ गई। अब आइए भाई आज के सबक पर। भाई कहते हैं फमीन हु अमीन अल मरफू आई औ मिमशतमला अलमिल फाइलियतिल फाइलु व इन्नमा कद्दमहु लिअन्नहु अस्लुल मरफूआति इंदल जमहूर। अब तकसीम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले मरफू के बारे में बतला दिया। मरफू किसे कहते हैं? जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। अब उसकी तकसीम करने लगे कि कौन कौन सी चीजें मरफू होती हैं। तो सबसे पहले फाइल को जिक्र किया। तो कहते हैं देखिए मतन मतन फमीन हुल फाइलो, तो फमीन हु मरफू में से जो है अल फाइलो एक फाइल है, मरफूआत में से एक फाइल है भाई। तो कहते हैं फमीन हुल फाइलो आई मीनल मरफूई औ मीम मश्तमला अला अलमिल फाइलियति। मीनहू के आखिर में हाज अमीर है। यह हाज अमीर का मर्जा क्या है? साहिब जामी बतला रहे आई मीनल मरफूई कि यह मीनहू की हाज अमीर भी उसी मरफू को राजे है जो पीछे हुआ मश्तमला के अंदर हुआ जमीर जिस मरफू को राजे थी, यानी जो मरफूआत के जिमन में मरफू आ गया। मरफूआत जमा है और जमा के जिमन में क्या मौजूद होता है? मुफरद मौजूद होता है। तो जैसे हुआ जमीर उस मरफू को राजे थी जो मरफूआत के जिमन में आया था, इसी तरह मिनहू की हा जमीर भी उसी मरफू को राजे है। औ मिमश्तमला अला अलमिल फाइलियति, या ये मिनहू की हा जमीर जो है वो मश्तमला को राजे है। भाई देखिए जरा फिर मतन दोबारा देखें। पीछे आया था हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति। हुआ से क्या मुराद? मरफू। भाई मरफू वो है जो मुश्तमिल होता है फाइल होने की अलामत पर। तवज्जो है। तो हुआ जमीर किसको राजे? मरफू को। तो ये किसकी तारीफ की जा रही है? मरफू की। तो मरफू हुआ मुअर्रफ, जिसकी तारीफ की जाए उसको क्या कहते हैं? मुअर्रफ। और मश्तमला अला अलमिल फाइलियति यह है तारीफ। तो हुआ क्या है? मुअर्रफ। और मश्तमला अला अलमिल फाइलियति यह क्या है? तारीफ। भाई और आप जानते हैं कि मुअर्रफ और तारीफ एक ही चीज है भाई, बस सिर्फ एक में इजमाल है एक में तफसील है। आप अलकलीमा कह लें या आप कह लें लफ्जों वजिया माना मुफरदिन, एक ही बात है। अलकलीमा क्या है? मुअर्रफ। और लफ्जों वजिया माना मुफरदिन यह क्या है? उसकी तारीफ है। और जिस पर मुअर्रफ सादिक आता है उस पर तारीफ भी सादिक आती है। जो कलीमा होगा वही लफ्जों वजिया माना मुफरदिन भी होगा। यहां पर भी इसी तरह हुआ जमीर किसको राजे? मरफू को। मरफू क्या है? मुअर्रफ, जिसकी तारीफ की जा रही है। और मश्तमला अला अलमिल फाइलिया यह क्या है? उसकी तारीफ। और तारीफ और मुअर्रफ आप जानते हैं, जिस पर मुअर्रफ सादिक आता है उस पर तारीफ सादिक आती है, और जिस पर तारीफ सादिक आती है उस पर मुअर्रफ सादिक आता है। तो आप चाहे मरफू कह लें या आप कह लें मश्तमला अला अलमिल फाइलिया, एक ही बात है। मरफू किसको कहते हैं? मश्तमला अला अलमिल फाइलिया। तो मरफू कह लें या मश्तमला अला अलमिल फाइलिया, दोनों एक ही बात है। हां अलबत्ता एक में इजमाल है एक में तफसील है। ये यूं कहें एक जो है मुअर्रफ है और एक क्या है? तारीख। अलबत्ता सादिक दोनों एक ही चीज पर आते हैं। तो यहां पर भी फमीनहू जो आया मीनहू इस हाज अमीर को साहिब जामी ने बतलाया, चाहे आप मरफू को राजे कर लें, किसको? यानी मुअर्रफ को राजे कर लें, या आप इस मिनहू जमीर को तारीफ यानी मश्तमला अला अलमिल फाइलियत की तरफ राजे कर लें, दोनों में से आप जिसकी तरफ भी चाहें राजे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। मिनहू की हा जमीर चाहे मुअर्रफ को राजे करें चाहे तारीफ को। मुअर्रफ क्या है? मरफू। और तारीफ क्या है? मश्तमला अला अलमिल फ, दोनों में से जिसको भी आप चाहें राजे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो फमीन हू अगर ये मरफू को राजे करें तो इबारत क्या बन गई? फमीन हुल फाइलू, मरफू में से एक क्या है? फाइल है। जिनसे मरफू में से एक फाइल, फाइल है। और अगर आप मिनहू की हा जमीर मश्तमला को राजे करें फिर क्या इबारत बन जाएगी, फमिनहू ऐ मिन मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, वो जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल होता है उसमें से एक फाइल है। भाई बात समझ में आ रही है? तो मिनहू की हा जमीर चाहे आप मुअर्रफ को राजे कर लें चाहे तारीफ को, अगर मुअर्रफ को राजे करें भाई तो फिर इस सूरत में इत्तेहाद मर्जा लाजिम आएगा और यह पसंदीदा है। भाई देखो इबारत के अंदर, इबारत के अंदर कई जमीरें लाई जाएं तो बेहतर और पसंदीदा यह है कि यह सब जमीरें एक ही चीज की तरफ राजे होनी चाहिए ताकि बात का समझना आसान हो जाए। और अगर एक जमीर एक चीज की तरफ राजे है, दूसरी गायब की जमीर आई वो किसी और चीज की तरफ राजे है, तीसरी जमीर आई वो किसी और चीज की तरफ राजे है, तो बाज औकात बात का समझना मुश्किल हो जाता है। तो क्या पसंदीदा है? पहले एक हुआ गायब की जमीर आई थी, वो हमने किसको लौटाई थी? मरफू को। और यहां मिनहू फिर गायब की जमीर आई तो पसंदीदा क्या है? इसको भी उसी की तरफ लौटाएं ताकि इंतिशार जमायर लाजिम ना आए भाई, ताकि इंतिशार जमायर लाजिम ना आए। इंतिशार जमायर ये जो अभी मैंने बयान किया कि एक जमीर किसी और चीज की तरफ लौट रही हो, दूसरी जमीर गायब की आए वो किसी और चीज की तरफ लौट रही हो, तो बाज औकात बात का समझना मुश्किल हो जाता है। तो पसंदीदा क्या है कि मर्जे में इत्तेहाद होना चाहिए, एक ही चीज की तरफ जमीरें लौटनी चाहिए ताकि बात का समझना आसान हो जाए। तो अगर मिनहू की हा जमीर किसको लौटाएं? मरफू को। और पीछे हुआ जमीर भी किसको लौटाई थी? मरफू को। तो इस सूरत में इत्तेहाद मर्जा लाजिम आएगा, इंतिशार जमाइर से हम बच जाएंगे और यह पसंदीदा है। बात समझ में आ गई? और आप चाहें तो मिनहू की हा जमीर किसको लौटाएं? मश्तमला को, जो तारीफ है उसकी तरफ लौटा दें। वजह यह कि इस सूरत में मर्जा करीब हो जाएगा। मश्तमला मिनहू के ज्यादा करीब है या हुआ ज्यादा करीब है? हुआ मश्तमला। इबारत पे देखो, नजर रखो, मिनहू के करीब वो हुआ ज्यादा करीब है या मश्तमला ज्यादा करीब है? मश्तमला ज्यादा करीब है। और मर्जा के अंदर भी पसंदीदा यह है, बेहतर यह है कि मर्जा करीब होना चाहिए भाई ताकि समझने में आसानी हो भाई। तो अगर मश्तमला को जमीर लौटाएं तो इस सूरत में मर्जा करीब होगा और यह पसंदीदा है। और नीस इस सूरत में मर्जा सराहतन मजकूर हो जाएगा। मर्जा भाई देखिए, हुआ जमीर किसको लौटाई थी? हुआ मश्तमला मरफू को। कौन सा मरफू? जो पीछे सराहतन जिक्र था या मरफूआत के जिमन में आया था? मरफूआत के जिमन में। तो मिनहू की हा जमीर भी अगर आप उस मरफू को राजे करेंगे तो वो मरफू तो सराहतन जिक्र नहीं है, वो तो मरफूआत के जिमन में आया था। और अगर आप मिनहू की हा जमीर मश्तमला को राजे करें तो मश्तमला तो खुद सराहतन मजकूर है। तो क्या पसंदीदा है कि मर्जा जिमनन मजकूर हो तो यह पसंदीदा है या सराहतन मजकूर हो तो यह ज्यादा पसंदीदा है? सराहतन हो भाई। बात समझ में आ गई? तो बहरहाल दोनों सूरतें जायज हैं। आप मिनहू की जमीर चाहे मरफून को राजे कर दें और चाहे आप उसकी जो तारीफ है मश्तमला उसको राजे कर दें। बात समझ में आ गई? देखिए भाई कहते हैं फमिनहू ऐ मिनल मरफूई, तो उसमें से तो मरफू में से औ मिन मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, या वो जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल है उसमें से अल फाइलु, एक क्या है? फाइल है। व इन्नमा कद्दमहू, जी भाई मरफूआत फाइल जो है वो भी मरफूआत में से है, मुब्तदा वो भी किस में से? मरफूआत में से। खबर भी किस में से? मरफूआत में से। तो मरफूआत कई हैं भाई, लेकिन साहिब काफिया ने सबसे पहले फाइल को जिक्र किया, मुब्तदा को पहले जिक्र नहीं किया, खबर को पहले जिक्र नहीं किया, बल्कि सबसे पहले किसको जिक्र किया? फाइल को। इसकी क्या वजह है? तो साहिब जामी आपको वजह बतलाएंगे। देखो हमारे उलमा, इंसान उनके इलम पर हैरान हो जाता है। ये नहीं कि जो जो बातें जहन में आती जा रही हैं मुसलसल वो लिखते जा रहे हैं, एक एक लफ्ज साहिब काफिया ने कितना गौर व फिक्र करने के बाद लिखा होगा, हत्ता कि किसको मुकद्दम करना है किसको मुअख्खर करना है, एक एक चीज का लिहाज रखा। अब मुब्तदा को मुकद्दम नहीं किया मरफूआत में से, बल्कि किसको मुकद्दम किया, फाइल को मुकद्दम किया। इसकी क्या वजह है, इस पर भी उलमा बहस करते हैं भाई। चुनाचे साहिब जामी आपको बतला रहे हैं कि मरफूआत में से बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मुब्तदा असल है, जितने मरफूआत हैं उनमें असल क्या है, मुब्तदा, जबकि जमहूर के नजदीक मरफूआत में से फाइल असल है भाई, वो असलुल मरफूआत है, तमाम मरफूआत में से जो असल है वो फाइल है। तो इसलिए साहिब काफिया ने भी जमहूर के मजहब को तरजीह दी और फाइल को मुकद्दम किया यह बतलाने के लिए कि तमाम मरफूआत में से असल फाइल है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन नमा कद्दमहू लिअन्नहु असलुल मरफूआत इंदल जमहूरी, मातिन ने फाइल को मुकद्दम किया क्योंकि जमहूर के नजदीक फाइल जो है असलुल मरफूआत है, तमाम मरफूआत में असल जो है वो फाइल है भाई। तो जमहूर के नजदीक असलुल मरफूआत फाइल है भाई, असलुल मरफूआत, जबकि अल्लामा ज़मख़शरी जो है बहुत बड़े नहवी और इल्म बलागत के बहुत बड़े माहिर गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि असलुल मरफूआत मुबतदा है, तमाम मरफूआत में असल जमहूर क्या फरमाते हैं, असलुल मरफूआत फाइल है, और अल्लामा ज़मख़शरी क्या फरमाते हैं, असलुल मरफूआत मुबतदा है, और दोनों की दो दो दलीलें जिक्र की साहिब जामी ने भाई। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं कि मुबतदा जो है वो असलुल मरफूआत है, मुबतदा असलुल मरफूआत है, तमाम मरफूआत में असल मुबतदा है, असल मुबतदा है, और दो दलीलें जिक्र की। एक तो दलील उनकी यह है कि मुबतदा जो है वो मुस्नद इलैह है, और मुस्नद इलैह के अंदर असल यह है कि उसको मुकद्दम होना चाहिए, और मुबतदा भी अक्सर और गालिबन मुकद्दम होता है भाई। मैंने आपको बतलाया था आसान लफ्जों में मुबतदा किसे कहते हैं, मुस्नद इलैह किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो है मुस्नद इलैह, और जो बात की जाए वो है मुस्नद। ज़ैदुन क़ाइमुन, किसके बारे में मैंने बात की, ज़ैद, तो ज़ैद है मुस्नद इलैह, और क्या बात की कि वो कायम है, तो ये है मुस्नद। तो मुस्नद इलैह किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, और मुस्नद जो बात की जाए। तो भाई पहले किसको होना चाहिए, जिसके बारे में बात की जाए उसको पहले होना चाहिए, या जो बात की गई उसको पहले होना चाहिए। फिर सुनो भाई, मुस्नद इलैह वो है जिसके बारे में बात की जाए, और मुस्नद जो बात की जाए, और असल भी क्या है, मुकद्दम किसको होना चाहिए भाई, जिसके बारे में बात की जा रही है पहले उसका जिक्र होना चाहिए, फिर आगे बात जिक्र होनी चाहिए कि मसलन ज़ैदुन आलिमुन, किसके बारे में बतलाना चाहता था मैं, जैद के बारे में, तो पहले जैद का जिक्र होना चाहिए और फिर इसके बारे में आगे ये बात होनी चाहिए कि वो आलिम है। तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं कि मुबतदा जो है वो असलुल मरफूआत है, इसलिए क्योंकि मुबतदा मुस्नद इलैह है, और मुस्नद इलैह को क्या होना चाहिए, मुकद्दम होना चाहिए, और जो आगे जो मुस्नद है उसको मुअख्खर होना चाहिए, और मुबतदा अपनी असल पर है। मुबतदा अक्सर और गालिबन क्या होता है, मुकद्दम, खबर बाद में आती है, कभी कभार मुबतदा भी मुअख्खर हो जाता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, मुबतदा मुकद्दम होता है। तो मुस्नद इलैह को होना भी क्या चाहिए, मुकद्दम, मुकद्दम होना चाहिए, और मुबतदा भी अपनी असल पर है यानी मुकद्दम होता है, इसलिए असलुल मरफूआत क्या है, मुबतदा है। बात समझ में आ गई। और दूसरी दलील वो देते हैं अल्लामा ज़मख़शरी के मुबतदा असलुल मरफूआत है, वो फरमाते हैं कि मुबतदा जो है उसकी खबर इसमें जामिद भी आ सकती है और मुश्तक भी, यानी मुबतदा पर आप हर किस्म का हुक्म लगा सकते हैं, इसमें जामिद का हुक्म भी लगा सकते हैं और मुश्तक का हुक्म भी लगा सकते हैं। मसलन ज़ैदुन है मुबतदा, मैं इसके लिए खबर मुश्तक ले आता हूं, ज़ैदुन आलिमुन, देखो आलिमुन कौन सा सीगा है, इसमें फाइल है, और इसमें फाइल का इश्तिकाक किससे हुआ है, मस्दर से हुआ है, तो देखो मुश्तक का हुक्म मैंने जैद पर लगा दिया, मुब्तदा पर, ज़ैदुन आलिमुन, जैद क्या है, मुब्तदा, और मैंने भी इस पर हुक्म लगाया, कौन सा हुक्म लगाया? आलिम होने का। और आलिम होना मुश्तक है या इसमें जामिद है? मुश्तक है। क्या है? तो देखो, मुब्तदा पर मुश्तक वाला हुक्म लगा दिया, और कभी मुब्तदा पर इसमें जामिद का हुक्म भी लगा दिया जाता है। इसमें जामिद किसे कहते हैं? जो न खुद किसी से बना हो और ना कोई और इससे आगे बने। जैसे रजुल, रजुल ना ये मस्तर है ना ये मुश्तक है भाई, तो ये इसमें जामिद है। मैं कहता हूं जैदुन रजुलुन, जैद आदमी है भाई, तो जैद पर मैंने हुक्म लगाया, कौन सा हुक्म? मुश्तक वाला या इसमें जामिद वाला? इसमें जामिद वाला। तवज्जो है, जैदुन आलिमुन, ये जैद पर मैंने कौन सा हुक्म लगाया? मुश्तक वाला। और जैदुन रजुलुन, ये रजुलुन कौन सा हुक्म लगाया जैद पर? इसमें जामिद वाला। तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं कि मुब्तदा, मुब्तदा पर हर किस्म का हुक्म लगाया जा सकता है, इसमें जामिद वाला भी हुक्म लगाया जा सकता है और मुश्तक वाला भी। मालूम हुआ मुब्तदा जो है वो कवी है। मुब्तदा क्या है? कवी है, लिहाजा ये असलुल मरफूआत है। तो दो दलीलें जिक्र कर दी साहिब जामीन ने अल्लामा ज़मख़शरी की। कौन कौन सी दो दलीलें? पहली दलील किस चीज की दलील? दावा क्या है कि मुब्तदा असलुल मरफूआत है। कौन फरमा रहे हैं? अल्लामा ज़मख़शरी। पहली दलील क्या? कि मुब्तदा मुसनद इलैह है, और मुसनद इलैह को क्या होना चाहिए? मुकद्दम होना चाहिए, और मुब्तदा भी अक्सर क्या होता है? मुकद्दम। मालूम हो मुब्तदा असलुल मरफूआत है। और दूसरी दलील यह है कि मुब्तदा जो है उस पर हुक्म इसमें जामिद वाला लगाना भी सही और इसमें मुश्तक वाला लगाना भी। तो दोनों तरह के हुक्म जो है मुब्तदा पर लग सकते हैं। मालूम हो मुब्तदा कवी है, मुब्तदा कवी है, तो यह असलुल मरफूआत है। दोनों दलीलें समझ में आ गई, एक तो कि मुकद्दम है और दूसरी दलील यह कि इसकी हर किस्म की खबर आ सकती है। जबकि जमहूर कहते हैं कि नहीं, फाइल असलुल मरफूआत है। असलुल मरफूआत मुब्तदा नहीं है, बल्कि असलुल मरफूआत फाइल है। भाई क्या वजह? कहते हैं इसलिए क्योंकि यह जुमला फिअलिया का जुज है, क्योंकि यह जुमला फिअलिया का जुज है जो असलुल जुमल है। याद रखो, एक है जुमला फिअलिया, एक है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा और खबर आते हैं। जैदुन आलिमुन, जैदुन है मुब्तदा, आलिमुन है उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। और एक जुमला फिअलिया होता है जिसमें पहले फेल आता है और आगे फिर फाइल या नाई फाइल आता है। जाराबा जैदुन, जाराबा फेल और जैदुन मरफू लफ्जन उसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। या जुरीबा अमरुन, फेले मजहूल ले आओ, फेले मजहूल के लिए फिर नाई फाइल आता है। तवज्जो है, एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया, और फाइल किसका जुज है? जुमला फेलिया का जुज है। और जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया में से जुमला फेलिया असलुल जुमल है, वो असल है। जुमलों में से असल जो है वह जुमला फिअलिया है। तवज्जो है, वजह यह भाई क्यों असलुल जुमल क्यों है? तवज्जो है, मैं क्या बात कर रहा हूं कि एक जुमला इस्मिया है, एक जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में क्या आते हैं? मुब्तदा और खबर। और जुमला फेलिया में फेल और आगे उसका फाइल या नाई फाइल आएगा। इन दोनों में से असल क्या है? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया असलुल जुमल है। भाई क्या वजह है जुमला फेलिया असलुल जुमल क्यों? वजह यह कि फेल को वजा ही इस्नाद के लिए किया गया है। फेल जब भी कलाम में आएगा हमेशा फाइल या नाई फाइल का तकाजा करेगा। फाइल या नाई फाइल के बगैर फेल आ ही नहीं सकता। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि फेल को बाकी रखें और उसके फाइल या नाई फाइल को हजफ कर दें और किसी चीज को भी उसका कायम मकाम ना बनाएं। नहीं, फेल आते ही फौरन किसका तकाजा करेगा? फाइल या नाई फाइल। यानी फेल अकेला रह ही नहीं सकता। इसको वजह ही इस्नाद के लिए किया गया है। इसने आते ही जुड़ना है किसके साथ? फाइल या नाई फाइल के साथ। जबकि मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर को उनको इस्नाद के लिए वजा नहीं किया गया। मसलन मैं आपसे कहता हूं जैदुन आलिमुन, या मैं आपको कहता हूं जैदुन रजुलुन, मुझे बताइए क्या जैद को मुब्तदा बनने के लिए ही वजा किया गया है? नहीं, जैद को मुब्तदा बनने के लिए वजा नहीं। जैद तो एक शख्स का नाम रखा गया है भाई, इसको मुब्तदा बनने के लिए वजा اسی طرح زید رجل، زید کی خبر کیا ہے؟ رجل. کیا رجل کے لفظ کو وضع ہی خبر بننے کے لیے کیا گیا ہے؟ نہیں بھائی، اس کو خبر بننے کے لیے یہ ان دونوں کو آپ نے جوڑا، آپ نے ان میں ترکیب پیدا کی، ایک کو مبتدا بنایا اور ایک کو خبر بنایا، ورنہ یہ مبتدا اور خبر ہونے کے لیے وضع نہیں. جبکہ فعل کو تو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کیا جائے گا کسی چیز کی طرف، کوئی چیز اس کے لیے فائل یا نائی فائل بنے گی. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو فعل کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ اسناد کے لیے. وہ بغیر اسناد کے رہ ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہوا دونوں جملوں میں سے، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں سے کون سا جملہ اصل ہے؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ اسناد کے لیے. جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر جو اسناد آتا ہے وہ آپ نے ان میں ترکیب پیدا کی، آپ نے ان کو آپس میں جوڑا ہے. اگر آپ نہ جوڑتے تو وہ مبتدا اور خبر نہ بنتے. جبکہ فعل جو ہے، جب آپ اس کو جب بھی لائیں گے آپ کو اس کا اسناد کرنا ہی پڑے گا، بغیر اسناد کے وہ استعمال ہی نہیں ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا دو جملوں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ان میں سے اصل الجمل کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ. اور اس جملہ فعلیہ کا جز کیا ہے؟ فاعل اس کا جز ہے. لہذا معلوم ہوا فاعل اصل المرفوعات ہے، کیونکہ یہ اصل الجمل کا جز ہے. فاعل کیا ہے بھائی؟ ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ، فاعل کس کا جز؟ جملہ فعلیہ کا. اور جملہ فعلیہ کیا ہے؟ اصل الجمل، تمام جملوں میں سے اصل جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. تو جب یہ اصل الجمل ہے تو اس کا جو جز ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ اصل المرفوعات ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جمہور کی ایک دلیل ہے. کہ جمہور کیا فرماتے ہیں؟ کہ فاعل اصل المرفوعات ہے، تمام مرفوعات میں اصل کیا ہے؟ فاعل. کیوں؟ کیونکہ یہ جز ہے کس کا؟ جملہ فعلیہ کا. اور جملہ فعلیہ کیا ہے؟ اصل الجمل ہے، تمام جملوں میں سے اصل ہے. تو جو اصل الجمل کا جز ہوگا یقیناً وہ کیا ہوگا؟ اصل المرفوعات ہوگا. اور دوسری دلیل جمہور کی، جمہور کیا کہتے ہیں؟ فاعل کیا ہے؟ اصل المرفوعات. دوسری دلیل یہ ہے کہ جو فاعل ہے اس کے اندر عامل فعل ہوتا ہے، یعنی لفظ ہوتا ہے، اور فعل سب سے قوی عامل ہے. توجہ ہے؟ فعل سب سے قوی عامل ہے، وہ ما بعد میں بھی عمل کرتا ہے، ما قبل میں بھی عمل کرتا ہے. فعل آتے ہی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل یا نائی فاعل. فاعل یا نائی فاعل تو ہمیشہ فعل کے بعد آتے ہیں، لیکن مفعول وغیرہ فعل پر مقدم بھی ہو سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن، ضربتو میں نے زید کی پٹائی کی. اب یہ ضربتو کی تا یہ فاعل ہے ضربتو کے لیے، اور زیدن اس کے لیے مفعول ہے، لیکن اس مفعول کو میں مقدم بھی کر سکتا ہوں، زیدن ضربتو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ زید ہی کی میں نے پٹائی کی، حسر آ گیا، قصر آ گئی. تخصیص، تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر والقصر والتخصیص. تو جتنے عامل ہیں سب سے قوی عامل کون سا ہے؟ فعل. وہ مقدم میں بھی عمل کرتا ہے اور مؤخر میں بھی عمل کرتا ہے، اپنے ما بعد میں بھی عمل کرتا ہے اور اپنے سے ما قبل میں بھی عمل کرتا ہے. تو چونکہ فاعل کے اندر عامل کون؟ فعل. اور فعل سب سے قوی عامل ہے، جبکہ مبتدا اور خبر، مبتدا کے اندر عامل کیا ہے؟ ابتدا. مبتدا کے اندر، مبتدا اور خبر میں عامل کیا ہیں؟ ابتدا. ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، اس طور پر کہ وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو. یاد رکھو ابتدا، ابتدا صرف مبتدا اور خبر ان دو میں عامل ہے، اور کسی چیز میں ابتدا عامل نہیں ہے. کس میں؟ مبتدا اور خبر، ان میں صرف ابتدا عامل ہے اور کسی چیز میں ابتدا عامل نہیں. اور دیکھو ابتدا کی کیا تعریف میں نے کی؟ اسم کا خالی ہونا کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. دیکھو مبتدا اور خبر، مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع ہے. بھائی رفع خود بخود آتا ہے، اس کے لیے عامل چاہیے، عامل چاہیے. تو مبتدا پر رفع ہے لیکن کوئی عامل موجود نہیں، خبر پر رفع ہے زید عالم لیکن کوئی عامل موجود نہیں، اور رفع تو خود بخود نہیں آتا، کوئی لفظ تو عامل ہے نہیں. تو نحوی حضرات مجبور ہوئے اور کہنے لگے کہ عامل ہے، یہ رفع خود بخود نہیں آ رہا بلکہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ عامل. بھئی کون سا عامل ہے؟ عامل تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, یہاں تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں, صرف مبتدا اور خبر ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہاں معنی عامل ہے. کیا عامل ہے؟ معنی عامل ہے, معنی عامل ہے. کیا عامل ہے؟ اور یہ صرف کس میں عامل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر میں. کس میں؟ مبتدا اور خبر, ان میں عامل معنوی ہے. ان میں عامل معنوی کیا مانا؟ کہ یہ عامل لفظی سے خالی ہیں اور ان پر رفع بھی آ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک مسند الیہ بن رہا ہے, دوسرا مسند بن رہا ہے, اور رفع خود بخود نہیں آتا. تو ان میں عامل کس کو مان لو؟ معنی کو. کس کو؟ کوئی لفظ عامل ہے؟ نہیں. توجہ ہے, مبتدا اور خبر, کوئی لفظ عامل ہے؟ کوئی لفظ ہے جو رفع دے رہے ہیں ان دونوں کو؟ تو رفع تو ان دونوں پر آ رہا ہے, اور رفع خود بخود آتا ہے, اس کے لیے کوئی عامل چاہیے. عامل چاہیے. کوئی لفظ تو عامل ہے نہیں, تو کس کو ماننا پڑے گا؟ معنی کو, کہ معنی عامل ہے. کیا ہے؟ معنی عامل ہے, یعنی کوئی لفظی چیز عامل نہیں ہے, معنوی چیز عامل ہے. بھئی کیا پھر بھی طلبہ پریشان ہوتے ہیں, معنی عامل ہے کیا معنی؟ بھئی عامل لفظی سے خالی ہونا, جب عامل لفظی نہیں ہے تو پھر کون سا عامل ماننا پڑے گا؟ معنوی عامل ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ معنی کے اعتبار سے عامل ہے, لفظوں کے اعتبار سے کوئی عامل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کا نام انہوں نے ابتدا رکھا ہے. یہ جو معنی ہے, جو رفع دے رہا ہے کس کو؟ مبتدا کو. اور کس کو؟ خبر کو. اس کا نام کیا رکھا؟ ابتدا. بات سمجھ میں آئی؟ بھائی ابتدا کو اچھی طرح سمجھ لو. طلبا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ابتدا کس چیز کا نام ہے. مبتدا اور خبر, توجہ ہے, ان دونوں پر رفع آیا یا نہیں؟ ان دونوں پر رفع آ رہا ہے. اور رفع خود بخود آتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل کی وجہ سے آتا ہے. تو ان کے اندر تو لفظ تو کوئی عامل ہے نہیں, تو کیا مان لو؟ معنی عامل ہے. کیا ہے؟ معنی عامل ہے. اور کس طرح عامل ہے؟ کہ ایک مسند الیہ ہے اور ایک کیا ہے؟ مسند ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند. تو آسان لفظوں میں یوں کہو کہ مبتدا اور خبر کا عامل لفظی سے خالی ہونا, یہ ہے ابتدا. کیا؟ مبتدا اور خبر کس سے خالی ہیں؟ عامل لفظی سے خالی ہیں. اور عامل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو عامل تو ضرور چاہیے. تو کس کو مان لو؟ معنی عامل ہے. اور معنی کس طرح عامل ہے؟ ہر لفظ میں یہ عامل ہوتا ہے یا صرف مبتدا اور خبر میں ہے؟ صرف مبتدا اور خبر میں. تو کیا تعریف کریں گے ابتدا کی؟ ہاں, اسم کا خالی ہونا. دیکھو مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر بھی اسم. اسم کا خالی ہونا کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. لیکن کس طور پر؟ کہ وہ مسند الیہ ہو یا یہ شرط ضروری ہے کہ وہ مسند الیہ ہو یا مسند ہو, اس کے بغیر نہیں. آپ کوئی بھی لفظ آپ لے آئے اٹھا کر اور آپ کہیں اس کے اندر ابتدا عامل ہے, نہیں نہیں بھائی, ابتدا صرف دو چیزوں کے اندر عامل ہوتا ہے, ایک ہے مبتدا اور ایک ہے خبر. اور کس کا نام ہے ابتدا؟ پھر دوہراؤ ذرا, اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے, بس یہ ہے. لیکن اس طور پر کہ وہ اسم کیا ہونا چاہیے؟ مسند الیہ ہونا چاہیے یا مسند ہونا چاہیے. تو دیکھا, مسند الیہ ہونا چاہیے صرف مبتدا آ گیا, یا مسند ہونا چاہیے تو کیا آ گیا؟ خبر آ گئی. تو ان دو کے علاوہ اور کسی میں ابتدا عامل نہیں. تو ابتدا کسے کہتے ہیں؟ عامل معنوی ہے. بس لفظی عامل نہیں ہے تو ابتدا عامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی, جمہور کی دلیل بیان میں کر رہا تھا. جمہور کیا فرماتے ہیں؟ کہ اصل المرفوعات فاعل ہے. پہلی دلیل کیا؟ کیونکہ یہ جز ہے جملہ فعلیہ کا, اور جملہ فعلیہ اصل الجمل ہے, تو جو اصل الجمل ہے اس کا جو جز ہوگا وہ بھی اصل المرفوعات ہوگا. اور دوسری دلیل یہ کہ فاعل کے اندر عامل کیا ہوتا ہے؟ فعل. فاعل کے اندر عامل فعل ہوتا ہے, تو یعنی عامل لفظی ہوتا ہے. جبکہ علامہ زمخشری کیا فرماتے تھے؟ مبتدا اصل المرفوعات ہے, حالانکہ مبتدا کے اندر تو عامل معنی ہے بھائی, لفظ نہیں ہے. اور ایک عامل لفظی ہوتا ہے, ایک عامل معنوی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے عامل لفظی قوی ہے, وہ لفظوں میں موجود ہے, آپ اس پر باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. جبکہ عامل معنوی وہ تو ایک معنوی چیز ہے بھائی, اس کا الگ کوئی وجود نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو فاعل کا عامل کون؟ फेल, लिहाजा जब फाइल का आमिल कवी है तो फाइल भी कवी हुआ, तो फाइल असलुल मरफूआत हुआ, और मुब्तदा का आमिल जो है वो माना है, वो मानवी आमिल है और वो ज़ईफ है, तो लिहाजा मुब्तदा भी असलुल मरफूआत नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, बहस अच्छी तरह समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या कि जमहूर के नजदीक असलुल मरफूआत फाइल है और अल्लामा ज़मख़शरी के नजदीक असलुल मरफूआत मुब्तदा है। अल्लामा ज़मख़शरी की क्या दलील, उनकी दो दलीलें जिक्र की, एक तो यह कि मुब्तदा मुसनद इलैह है और मुसनद इलैह के अंदर असल क्या है उसको क्या होना चाहिए, मुकद्दम होना चाहिए, और मुब्तदा भी अक्सर क्या होता है, मुकद्दम होता है, मालूम हो मुब्तदा असलुल मरफूआत है। और दूसरी दलील यह जिक्र की थी कि मुब्तदा की खबर जो है वो मुश्तक भी आ सकती है और जामिद भी आ सकती है, जबकि फाइल के लिए हमेशा वो मुश्तक ही जो है मुसनद बनेगा। फेल क्या होता है, मुश्तक होता है, या सिफत के सीगे वो भी क्या होते हैं, मुश्तक होते हैं। तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं कि मुब्तदा अपनी असल पर है, यानी मुकद्दम भी होता है अक्सर, और नीज इसके लिए खबर जो है मुश्तक भी आ सकती है और जामिद भी आ सकती है, लिहाजा ये असलुल मरफूआत है। जबकि जमहूर क्या फरमाते हैं, जबकि जमहूर फरमाते हैं कि फाइल जो है असलुल मरफूआत है, क्योंकि फाइल जुज है असलुल जुमल यानी जुमला फेलिया का, तो जो असलुल जुमल का जुज होगा वो भी क्या होगा, असलुल मरफूआत होगा। और नीज दूसरी वजह यह कि फाइल जो है उसका आमिल कवी होता है, फाइल के अंदर आमिल लफ्ज होता है, जबकि मुब्तदा के अंदर आमिल माना होता है, तो उसका आमिल ज़ईफ है, लिहाजा इस वजह से भी फाइल जो है वो असलुल मरफूआत है, क्योंकि उसका आमिल कवी, तो उसका आमिल कवी है, मालूम हो वो असलुल मरफूआत है। भाई अब देखिए सिर्फ तर्जमा, भाई कहते हैं वह इन्नमा कद्दमहु लिअन्नहु असलुल मरफूआत इंदल जमहूरी, और साहिब काफिया ने फाइल को मुकद्दम किया क्योंकि फाइल असलुल मरफूआत है जमहूर के नजदीक। जमहूर क्या माना भाई, जमहूर यानी अक्सर नहवी हजरात, अक्सर नहवी उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि फाइल असलुल मरफूआत है। तो कहते हैं लियान्नहु असलुल मरफूआत इंदल जमहूरी, इसलिए क्योंकि फाइल जो है असलुल मरफूआत है जमहूर के नजदीक। भाई क्या वजह, जमहूर के नजदीक असलुल मरफूआत क्यों, वो दोनों दलीलें आप जिक्र करेंगे। कहते हैं लिअन्नहु जुज उल जुमलतिल फ़िअलियति, इसलिए क्योंकि फाइल जो है जुज है उस जुमला फ़िअलिया का, अल्लती ही असलुल जुमली, वो जुमला फ़िअलिया जो कि असलुल जुमल है यानी जुमलों में असल है। ولأن عامله أقوى من عامل المبتدا, दूसरी दलील, और इसलिए क्योंकि ये फाइल का जो आमिल है वो ज्यादा कवी है मुबतदा के आमिल के मुकाबले में, क्योंकि फाइल का आमिल लफ्स है और मुबतदा का आमिल माना है। भाई वकीला, और कहा गया है, ये अल्लामा ज़मख़शरी का कौल जिक्र कर रहे हैं और कीला के साथ जिक्र कर रहे हैं। याद रखो कीला सीगा तमरीज कहलाता है, कीला क्या कहलाता है, सिगा तमरीज, ये मरज से है मरज, जैसे मरीज आदमी कमजोर होता है इसी तरह कीला के जरिए भी कमजोर कौल को जिक्र किया जाता है। तो वकीला के जरिए किसके कौल को जिक्र कर रहे हैं, अल्लामा ज़मख़शरी के कौल को जिक्र कर रहे हैं और कीला के साथ जिक्र कर रहे हैं, बतला दिया कि यह कमजोर कौल है। वकीला, और कहा गया है असलुल मरफूआत इल मुब्तदाउ, के असलुल मरफूआत जो है वो मुब्तदा है, ले अन्नहु बाकिन अलामा हुअल असलु फिल मुस्नद इलैही, इसलिए क्योंकि मुब्तदा बाकी है उस चीज पर जो के असल है मुस्नद इलैह में, क्योंकि वो बाकी है उस हालत पर जो मुस्नद इलैह में असल है। मुस्नद इलैह में भी असल क्या है, उसको क्या होना चाहिए, मुकद्दम होना चाहिए, क्योंकि मुस्नद इलैह वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, और जो बात की जा रही है वो है मुस्नद, तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसको मुकद्दम होना चाहिए और जो बात की जा रही है वो मुअख्खर होनी चाहिए, और मुब्तदा अपनी असल पर बाकी है। मुब्तदा भी अक्सर क्या होता है, मुकद्दम होता है। कहते हैं वकील असलुल मरफूआतिल मुब्तदा, और कहा गया है कि असलुल मरफूआत मुब्तदा है, लिअन्नहु बाकिन अला मा हुवल असलु फिल मुस्नद इलैही, इसलिए क्योंकि मुब्तदा बाकी है उस हालत पर जो मुस्नद इलैह में असल है। भाई वो क्या है असल? कहते हैं वह हुआ तकद्दुम, और वो मुकद्दम होना है बिखिलाफिल फाइल, बखिलाफ किसके? फाइल के वो कभी भी मुकद्दम नहीं होता, वो हमेशा फेल के बाद आता है। आपको मैंने बतलाया था कि फाइल या नाई फाइल कभी फेल पर मुकद्दम नहीं हो सकते, और मामूलात जो हैं फेल पर मुकद्दम हो सकते हैं, लेकिन फाइल या नाई फाइल कभी भी मुकद्दम नहीं हो सकते। पहले फेल आता है, उसके बाद फाइल या नाई फाइल आता है, तो फाइल या नाई फाइल हमेशा मुअख्खर होता है। बात समझ में आ गई? यह माना है बेखिलाफ अल-फाइल, बेखिलाफ फाइल के, क्योंकि वह मुअख्खर होता है। यह पहली दलील। अल्लामा ज़मख़शरी की पहली दलील क्या? कि मुब्तदा अपनी असल पर बाकी है, कि वो अक्सर क्या होता है? मुकद्दम, जबकि फाइल हमेशा मुअख्खर होता है। दूसरी दलील अल्लामा ज़मख़शरी की, कहते हैं वली अन्नहु युहकमु अलैहि बिकुल्लि हुक्मिन, कि इस मुब्तदा जो है इस पर हुक्म लगाया जाता है, बिकुल्लि हुक्मिन, हर हुक्म भाई, जामिदिन औ मुश्तकिन, चाहे वो जामिद हो या मुश्तक हो, हर तरह का हुक्म मुब्तदा पर लगाया जाता है। ज़ैदुन आलिमुन, देखो जैद पर आलिम मुश्तक का हुक्म लगाया, और जैदुन रजुलुन, जैद पर रजुल यानी जामिद का हुक्म लगाया, जबकि फाइल, फाइल के लिए तो हमेशा क्या चाहिए? फेल या सिफत का सिगा चाहिए। जाराबा के लिए भी क्या चाहिए? फाइल। जारिबुन के लिए भी क्या चाहिए? फाइल। तो फाइल पर हमेशा मुश्तक वाला हुक्म तो लग सकता है, इसमें जामिद वाला हुक्म नहीं लग सकता, जबकि मुब्तदा पर इसमें जामिद वाला हुक्म भी लग सकता है और मुश्तक वाला भी। मालूम हुआ मुब्तदा कवी है। तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मालूम हुआ कि मुब्तदा असलुल मरफूआत है। दलील समझ में आ गई? कहते हैं वली अन्नहु युहकमु अलैहि बिकुल्लि हुक्मिन जामिदिन औ मुश्तकिन, और इसलिए क्योंकि मुब्तदा उस पर हर तरह का हुक्म लगाया जाता है, चाहे इसमें जामिद हो या मुश्तक हो। फकान अक्वा, तो मुब्तदा ज्यादा कवी है, बिखिलाफिल फाइल, बखिलाफ फाइल के, फइन्नहु ला युहकमु अलैहि इल्ला बिल मुश्तकी, इसलिए क्योंकि उस पर हुक्म नहीं लगाया जाता मगर मुश्तक के जरिए। उस पर सिर्फ किसका हुक्म लगाते हैं? मुश्तक का हुक्म लगाते हैं, या जो मुश्तक के हुक्म में होता है वो हुक्म लगेगा उस पर, इसमें जामिद वाला हुक्म नहीं लगता भाई फाइल पर। तो मालूम हुआ असलुल मरफूआत मुबतदा है अल्लामा ज़मख़शरी के नजदीक। भाई बात समझ में आ गई? आगे देखिए भाई, कहते हैं वह हुआ अयिल फाइलु मा अयस्मुन हकीकतन औ हुक्मन लियदखुल फीही मिस्लु कौलिहिम अअजबनी अन ज़रबत ज़ैदन। भाई पहले सिर्फ मतन मतन जरा देख लें। कहते हैं वह हुआ मा उसनीद इलैहिल फ़िअलु औ शिबहुहु व क़ुद्दिमा अलैहि अला जिहति क़ियामिही बिही। अब फाइल की तारीफ करने लगे हैं, बतलाया मरफूआत में से एक फाइल है, अब फाइल की तारीफ करने लगे हैं। लेकिन फाइल की तारीफ समझने के लिए आपको तरकीब आनी चाहिए भाई। जामी में सारी बातें वो तरकीब की करते हैं, तरकीब आती हो तो जामी का समझना बड़ा आसान है, और तरकीब बड़ी आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ी सी कुछ अरसा इंसान मेहनत कर ले, तवज्जो कर ले, तो बेहतरीन तरकीब सीख लेता है। तो पहले हम कुछ तरकीब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइल की तारीफ समझ में आएगी। फाइल की तारीफ समझने के लिए कुछ तरकीब की बुनियादी बातें मैं दोबारा जिक्र कर देता हूं, ताकि बातें जहन में ताजा हो जाएं, फिर इंशाल्लाह इसका समझना आसान है भाई। भाई याद रखो, मैं पहले भी जिक्र कर चुका, हर फेल के लिए हमेशा फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए। फेल जब भी आ जाए वो तकाजा करता है कि किसी इसम को रफा दे, और वो जिस इसम को रफा देता है वो उसका फाइल या नाई फाइल कहलाता है। फेल मारूफ जो है वो फाइल का तकाजा करता है, और फेल मजहूल जो है वो नायबुल फाइल का तकाजा करता है। तवज्जो है, हर फेल के लिए हमेशा क्या चाहिए? फाइल या नाई फाइल चाहिए। और याद रखो ये फाइल या नाई फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, ये कभी भी फेल पर मुकदम नहीं हो सकता। और फाइल भी मरफू होता है और नाइबुल फाइल भी मरफू होता है। हां, और ये भी याद रखना फेल के लिए हमेशा एक ही फाइल या नाई फाइल आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। आतफ के जरिए हो सकता है एक एक मातूफुन अलैह हो और बाकी आगे मातूफ, लेकिन बराह रास्त फेल के लिए फाइल या नाई फाइल एक ही आएगा। तो फेल हमेशा किसका तकाजा करता है? फाइल या नाई फाइल का, और फाइल या नाई फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, कभी भी फेल पर मुकदम नहीं हो सकता। और फिर यह भी याद रखना कि फाइल या नाई फाइल एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। और फाइल या नाई फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो इसमें जाहिर है ये इसमें जमीर के मुकाबले में है। सारी दुनिया के आप इसम इकट्ठे कर लें, इसमें 70 जो हैं वो जमीरें हैं और बाकी जितने इसम हैं वो सब क्या हैं? इसमें जाहिर कहलाते हैं। तवज्जो है, जो भी इसम आपके सामने आए आप फौरन उसमें गौर करें कि ये जमीर है या जमीर नहीं। अगर जमीर नहीं तो फिर वो इसमें जाहिर कहलाएगा। अब आप मुझे बताइए, आना जमीर है या इसमें जाहिर? आना जमीर है। अच्छा, अंता जमीर है, हुआ जमीर है, नहनो जमीर है, कलम ये इसमें जाहिर, जब जमीर नहीं तो इसमें जाहिर है, किताब इसमें जाहिर है, जबलुन इसमें जाहिर है, समा इसमें जाहिर है। बात समझ में आ गई? तो जो भी इसम आए आप खुद उसमें गौर कर लें, अगर वो जमीर नहीं तो इसमें जाहिर है। तो फेल का फाइल या नाई फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर भी, लेकिन आएगा एक ही। अगर जमीर अगर फाइल आ गई तो इसमें जाहिर नहीं आ सकता, और अगर इसमें जाहिर आ गया तो फिर जमीर नहीं आ सकती। मसलन आपके सामने एक जुमला लिखा है, जाराबा जैदुन, जाराबा जैदुन, कैसे तरकीब करेंगे? जाराबा फेल, जैदुन मरफू लफजान फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। आपका एक साथी फौरन एतराज करता है कि भाई जाराबा के अंदर हमने सर्फ में पढ़ा है जाराबा के अंदर हुआ जमीर होती है, आपने वो जमीर जिक्र ही नहीं की, आपकी तरकीब गलत है। तो आप क्या जवाब देंगे? कि फाइल या नाई फाइल एक आ सकता है और वो इसमें जाहिर जैद आगे आ गया। अगर जैद को फाइल बनाना है तो जराबा के अंदर कोई जमीर नहीं, क्योंकि फाइल या नाई फाइल एक आ सकता है, दो नहीं आ सकते। और अगर हुआ जमीर इसके अंदर निकालोगे तो फिर जैद को इसके लिए फाइल नहीं बना सकते। तो फाइल या नाई फाइल एक ही आएगा, और वो जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी हो सकता है। फिर याद रखो फाइल या नाई फाइल, भाई माजी और मुजारे के 14 सीगे हैं, इसमें से सिर्फ पहला और चौथा सीगा जो है उनके लिए फाइल इसमें जाहिर आ सकता है, बाकी जितने सीगे हैं उनके लिए फाइल की फाइल हमेशा जमीर होगी जो उसी लफ्ज के साथ जुड़ी हुई होगी, या उस यानी बारिश होगी जाहिर होगी या उसी के अंदर छुपी हुई होगी। पहला और चौथा सीगा सिर्फ इनके लिए फाइल इसमें जाहिर आ सकता है, बाकी जो 12 सीगे हैं उनके लिए फाइल कभी भी इसमें जाहिर नहीं आ सकता। लिहाजा आप इबारत पढ़ रहे हो, इबारत के अंदर अगर पहला या चौथा सीगा आ जाए, पहला सीगा कौन सा? वाहिद मुजक्कर गायब, और चौथा सीगा कौन सा? वाहिद मुअन्नस गायब, यानी जाराबा जाराबा जाराबू जाराबत, भाई तो जाराबा और जाराबत, जाराबा वाहिद मुजक्कर गायब और जाराबत वाहिद मुअन्नस गायब। इसी तरह मुजारे में आ जाओ, ये तो माजी था, मुजारे में आ जाओ, यजरीबू यजरीबानी यजरीबूना तजरीबू, तो यजरीबू पहला सीगा और तजरीबू चौथा सीगा, इन दो के लिए फाइल इसमें जाहिर आ सकता है, बाकी जो 12 सीगे हैं चाहे माजी के हैं चाहे मुजारे के हैं उनमें फाइल हमेशा जमीर होगी। तवज्जो है, पहला सीगा भी मुफरद वाला है और चौथा सीगा भी मुफरद। इससे एक और बात आपको पता चल गई कि फाइल जब भी इसमें जाहिर हो फेल को हमेशा मुफरद रखते हैं। फाइल जब भी इसमें जाहिर हो फेल को हमेशा क्या रखते हैं? मुफरद, यानी पहला या चौथा सीगा। मसलन मैंने कहा जाराबा जैदुन, तो जैदुन जमीर है या इसमें जाहिर? इसमें जाहिर, और इसमें जाहिर कौन से सिगों के लिए फाइल बन सकता है? पहले या चौथे के लिए। और ये जाराबा भी कौन सा है? पहला सीगा है। या यज़रिबु ज़ैदुन, देखो यज़रिबु के लिए ज़ैद इसमें जाहिर है, फाइल है, तो यज़रिबु पहला सीगा है। मुअन्नस हो तो चौथा सीगा लाएंगे। ज़ारबत हिंदुन या तज़रिबु हिंदुन मुजारे के अंदर, तो इसमें जाहिर सिर्फ कौन से सीगों के लिए फाइल बन सकता है? पहले और चौथे के लिए। बाकी सीगों में से कोई सीगा आ जाए तो फिर भाई देखिए, आप इबारत हल कर रहे हैं और आपके सामने पहला या चौथा सीगा आ गया, फिर तो आप आगे तलाश करें कि हो सकता है कोई इसमें जाहिर इनके लिए फाइल बन रहा हो, क्योंकि ये पहला या चौथा सीगा इनके लिए फाइल इसमें जाहिर आ सकता है। और अगर इन दो के अलावा कोई और सीगा आ जाए इबारत में, तो फिर आपको आगे इस फाइल को तलाश करने की जरूरत नहीं है, फिर इसी सीगे के साथ जुड़ी हुई या इसके अंदर छुपी हुई कोई जमीर होगी जो फाइल या नाई फाइल बन रही होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए भाई, जाराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, जाराबा फेल, जैदुन उसके लिए फाइल। अब मैं अज़ैदानी को फाइल बनाना चाहता हूं तस्निया को, तो कैसे कहूंगा? हाँ वो शाबाश, जाराबा अज़ैदानी। मैं अज़ैदूना को फाइल बनाना चाहता हूं तो भी क्या कहूंगा? जाराबा अज़ैदूना। देखो, फाइल जैदुन लाएं या अज़ैदानी लाएं या अज़ैदूना लाएं, चाहे मुफरद हो, तस्निया हो, जमा हो, इसको आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ यह देखना है जैदुन इसमें जाहिर है या जमीर है, अज़ैदानी इसमें जाहिर है या जमीर है? इसमें जाहिर। अज़ैदून जमीर है या इसमें जाहिर? तो चाहे फाइल मुफरद हो, तस्निया हो, जमा हो, लेकिन जब इसमें जाहिर हो, फेल को हमेशा क्या रखना है? मुफरद। और जैदुन भी मुजक्कर, अज़ैदानी भी मुजक्कर, अज़ैदून भी मुजक्कर, तो मुजक्कर के लिए फिर पहला फेल लाते हैं ज़ाराबा। और अगर यह मुअन्नस हो, हिंदुन, अल हिंदानी या अल हिंदातु, तो फिर चौथा सिगा लाएंगे ज़ाराबत। भाई बात समझ में आ गए? तो फाइल जब भी इसमें जाहिर हो, फेल को हमेशा क्या रखते हैं? मुफरद रखते हैं। वो फाइल चाहे मुफरद हो, तस्निया हो, जमा हो, इसको आपने नहीं देखना। तवज्जो है? ज़ाराबा ज़ैदुन, ज़ाराबा अज़ैदानी, ज़ाराबा अज़ैदूना। फाइल क्या है? जैदुन है या अज़ैदानी है या अज़ैदुन? तो आपने ये नहीं देखना कि ये तो एक फाइल मुफरद है, एक तस्निया है, एक क्या है? जमा। आपने सिर्फ ये देखना है ये इसमें जाहिर है या नहीं, चाहे जैदुन हो, चाहे अज़ैदानी हो, चाहे अज़ैदून हो, ये सब क्या है? इसमें जाहिर। और हमने जाब्ता पढ़ा है, जब फाइल इसमें जाहिर हो, फेल को हमेशा पहला सीगा लाते हैं या चौथा। पहला किसके लिए लाते हैं? मुजक्कर के लिए। और चौथा किसके लिए लाते हैं? मुअन्नस के लिए। तो यहां जैदुन, अज़ैदानी, अज़ैदूना, इन सब के लिए ज़ाराबा लेकर आएंगे। बात समझ में आई? आपका एक साथी आपको कहता है कि नहीं भाई, अज़ैदानी तस्निया है, लिहाजा ज़ाराबा नहीं लाएंगे, ज़ाराबा लाएंगे, तस्निया वाला सीगा लाएंगे, ज़ाराबा अज़ैदानी। आप कहेंगे नहीं भाई, फाइल या नाई फाइल एक आ सकता है, फाइल या नाई फाइल, और ज़ाराबा के साथ ये अलिफ जमीर जुड़ी हुई है, ये फाइल है, इसके लिए अज़ैदानी को आप फाइल नहीं बना सकते। या मसलन वो कहता है कि अज़ैदूना के लिए आपको ज़ाराबू लाना पड़ेगा, ज़ाराबू अज़ैदूना, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ज़ाराबू के साथ तो ये वाव ज़मीर फाइल की जुड़ी हुई है और फाइल एक आ सकता है, दो नहीं आ सकते। जब ये वाव आ गया तो ये ज़ाराबू के लिए फाइल बनेगा और अज़ैदूना को आप इसके लिए फाइल नहीं बना सकते। अगर आप अज़ैदूना को फाइल बनाना चाहते हैं तो ज़ाराबा पहला सीगा या चौथा ही लाना पड़ेगा। बात समझ में? मुजक्कर के लिए पहला सीगा और मुअन्नस के लिए चौथा, चाहे माजी हो, चाहे मुजारे हो। यहां तक बात समझ में आ गई? आप जरा ये फेल के जो 12 सीगे हैं, माजी के और मुजारे, इनके अंदर जरा फाइल की जमीरें आप देख लें, कौन कौन से फाइल क्या क्या हैं। ज़ाराबा के अंदर अगर जमीर निकालें, कौन से निकालते हैं? हुआ ज़ाराबा, इसके अंदर अलिफ, ये अलिफ का एराब बोलो, मरफू महल्लन फाइल, क्योंकि याद रखो फाइल और नाई फाइल हमेशा मरफू होते हैं। जब एक लफ्ज के बारे में आपको कोई बता दे कि ये फाइल या नाई फाइल है, साथ ही दूसरी बात भी आपको पता चल गई कि इस पर क्या पढ़ना है, रफा। हां फिर रफा आपने गौर करना है, कभी रफा लफ्जन होता है, कभी तकदीरन और कभी महलन, और जमीर तो मबनियात में से है, उस पर रफा कैसे आएगा, हमेशा महलन आएगा। तो जराबा इसके अंदर ये अलिफ ये क्या है, फाइल, इसका इराब बोलो मरफू महलन। मरफू क्यों, फाइल है, और महलन क्यों, क्योंकि मबनी है, जमीर है। जराबू के अंदर ये वो मरफू इराब बोलो मरफू महलन। जराबत के अंदर हां जराबत के अंदर ही आ, ये ता सिर्फ तानीस की अलामत है, ये जमीर नहीं। भाई कैसे पता कैसे चलेगा, देखो आप कहते हैं जराबत हिंदुन, जराबत अगर ये ता जमीर होती फिर तो ये फाइल बनती, हिंदुन तो फाइल नहीं बन सकता था, मालूम हुआ ये ता जमीर नहीं है बल्कि ये सिर्फ ये मुअन्नस की अलामत है। ये सिर्फ इतना बतला रही है कि इस फेल का आगे जो फाइल है वो मुअन्नस जात है, मुजक्कर नहीं है। अच्छा आगे जरा बता, इसके अंदर अलिफ, भाई ता वही वाली है तानीस की अलामत, और अलिफ, अलिफ कौन सी जमीर है भाई, देखो जो सीगा होता है वही बोल दिया करो, जरा बता कौन सा सीगा है, तस्निया मुअन्नस गायब, तो अलिफ भी कौन सी जमीर, तस्निया मुअन्नस गायब, और जराबा जराबा जराबू, ये जराबा इसके अंदर अलिफ तस्निया मुजक्कर गायब, तो जो सिगा हो वो बोल दिया करो वही जमीर होती है। तो जराबा के अंदर भी अलिफ जमीर फाइल, और जराबता में भी अलिफ जमीर फाइल, लेकिन फर्क क्या, जराबा में अलिफ कौन सी जमीर है, तस्निया मुजक्कर गायब, और जराबता में अलिफ जो है वो तस्निया मुअन्नस गायब की जमीर है, और जारा बनना इसमें नून जमीर जो है एराब बोलो इसका मरफू महलन, मरफू क्यों, क्योंकि फाइल है, और महलन क्यों, मबनी है। उससे अगला सीगा क्या, जराबता, जराबता में ता जमीर, जराबतुमा में तुमा जमीर, जराबतुम में तुम जमीर, जराबती में जराबती में ताज अमीर, जराबती में ताज अमीर, बात समझ में आ गई भाई। अमूमन तुलवा इसको ती पढ़ते हैं, ती जमीर नहीं भाई, मैंने बताया जो कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, जब उसका नाम लेना हो तो वो नाम लेंगे जो हरूफ तहजी में, और जराबती के आखिर में ये कौन सा हर्फ है, इसको हरूफ तहजी में क्या कहते हैं, ता, तो ये जराबती में ताज अमीर है, और कौन सी जमीर है, हाँ कौन सी जमीर है, वाहिद मुअन्नस हाजिर, भाई जो सिगा है वो बोल दिया करो वाहिद मुअन्नस हाजिर, और एराब बोलो मरफू महलन, भाई शाबाश, मरफू क्यों, फाइल है, महलन क्यों, मबनी है। जरब तुमा में तुमा जमीर, जरब तुन्ना में तुन्ना जमीर, जरब तू में हां फिर तू जमीर, भाई जराब तू में, हाँ जराब तू में ताज अमीर, जराब तू में ताज अमीर, मैंने बताया ये ता का कोई माना है या माना नहीं, माना है तो ये कलीमा हुआ, तवज्जो है, जमीरों का माना होता है या नहीं होता, तो जो भी कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो उसका जब नाम लेना हो तो कौन सा नाम लेते हैं, हुरूफ तहजी में, और इस हर्फ को जरबतु के आखिर में जो है इसको हुरूफ तहजी में क्या कहते हैं, ता, तो जरबतु इसमें जमीर फाइल कौन सी है, ता जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, मरफू क्यों, फाइल है, और महलन क्यों, भाई जराब तू, मैं इस पर जम्मा बाकायदा रफा इस पर पढ़ रहा हूं, तो अब महलन कैसे, तो लफजन है, शाबाश, ये इसकी हरकत है, ये एराब नहीं, क्योंकि ये मबनी है, जमीर है, और मबनी पर एराब जाहिर नहीं हो, और जराब नाम ना जमीर है, मरफू महलन। अब मुजारे में आ जाओ, यजरीबू के अंदर हुआ जमीर, यजरीबानी में अलिफ है, ये जो नून है ये नून एराबी है, फेले मुजारे में याद रखो ये जो दो नून जमा मुअन्नस के आते हैं, जो नून यानी छठा और बारवां सीगा, جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یا ضریبنا اور تظہریبنا، یہ نون ضمیریں ہیں. باقی جتنے نون فعل مضارع میں آتے ہیں یہ نون اعرابی ہیں، یہ رفع کی علامت ہیں. یہ نون جب موجود ہو معلوم ہو فعل مضارع مرفوع ہے، اور یہ نون جب نہیں ہوگا معلوم ہو منصوب ہے یا مجزوم ہے. بات سمجھ میں جی؟ تو یضربو کے اندر کون سی ضمیر ہوا؟ یضربانی میں الف ضمیر ہے، اور یہ نون کیا ہے؟ نون اعرابی. یضربون میں واو ہے، اعراب بولو واو کا، مرفوع محل. اور تضربو میں ہیا ضمیر، تضربانی میں الف، یا ضربنا میں یہ نون ہے. میں نے بتایا جمع مؤنث کے دونوں نون ضمیریں ہیں. اور تضربو میں، ہاں تضربو ساتواں صیغہ ہے، تضربو ساتواں صیغہ کون سا ہے؟ مخاطب کا. تو تضربو میں انت، تضربو میں انت ضمیر ہے. تضربانی میں الف ہے، تضربونا میں واو ہے، تضربینا میں، ہاں تضربینا میں یا ہے، یہ نون اعرابی ہے تضربینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تضربانی میں الف ہے، اور تضربنا میں، تضربنا میں نون ضمیر ہے، اور اضربو میں انا ضمیر ہے، اور نضربو میں نحنو. بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ اضربو، نضربو، تضربو وغیرہ، یہ شروع میں حمزہ، تا یا نون، یہ ضمیریں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم. اضربو میں اگر آپ حمزہ کو فاعل کہیں گے تو فاعل فعل پر مقدم ہو گیا، حالانکہ فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم. اسی طرح نضربو کے اندر نون جو ہے یہ فاعل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فعل پر مقدم ہے، اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو. تو اضربو میں کون سی ضمیر ہے؟ انا. اور نضربو میں نحنو، یہ سب مرفوع محلن ہیں، فاعل ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس کریں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں. یہ ترکیب کی موٹی موٹی باتیں کچھ گزر گئیں، کچھ تھوڑی سی اور میں ذکر کر دوں گا، پھر انشاءاللہ اگلا آگے کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.